एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने अमेरिकी साहित्य और कह सकते हैं सोच पर भी एक गहरी छाप छोड़ी है। जेम्स बाल्डविन का निबंध संग्रह नोट्स ऑफ अ नेटिव सन, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था।
बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि करीब करीब 70 साल बाद भी ये किताब उतनी ही मतलब जरूरी और शक्तिशाली महसूस होती है,
है ना?
ये सिर्फ अमेरिका में नस्ल या पहचान की ही बात नहीं करती, ये उन गहरे मनोवैज्ञानिक और अस्तित्व से जुड़े सवालों में उतरती है कि भाई इंसान होने का मतलब क्या है, खासकर तब जब समाज आपको लगातार कमतर महसूस कराए।
हाँ, और ये किताब ना नफ़रत और प्रेम के उस अजीब से उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करती है। एक तरफ तो अन्याय करने वाली व्यवस्था के लिए गुस्सा है, नफ़रत है, और दूसरी तरफ उसी माहौल में अपनी इंसानियत और हाँ, दूसरों के लिए प्यार, उसे बचाए रखने की जद्दोजहद, क्या ये मुमकिन भी है? मतलब यही बड़ा सवाल बाल्डविन उठाते हैं।
तो चलिए इस किताब को और इसके लेखक को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जेम्स बाल्डविन 1924 से 1987 तक, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक तरह से अमेरिका की अंतरात्मा की आवाज़ थे। एक निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार और हाँ, जबरदस्त सामाजिक आलोचक भी। न्यूयॉर्क के हार्लेम इलाके में उनका बचपन बीता।
और उनका शुरुआती जीवन, जैसा आपने कहा, आसान नहीं था। गरीबी थी और उनके सौतेले पिता, जो एक छोटे से चर्च के पादरी थे, उनके साथ उनका रिश्ता बहुत, कह सकते हैं, तनाव भरा था। और माना जाता है कि इसी अनुभव ने उन्हें धर्म, समुदाय और अश्वेत परिवारों पर जो मनोवैज्ञानिक बोझ पड़ता है, उसकी एक गहरी समझ दी,
हाँ,
जो उनके लेखन में बार बार दिखती है। वो जानते थे कि बाहरी दबाव इंसान के अंदर क्या उथल पुथल मचा सकते हैं।
और उनकी एक और खासियत थी उनका नजरिया। देखिए, वो हालम में पले बढ़े तो वो अंदर के आदमी थे, उस दुनिया को उन्होंने जिया था। लेकिन फिर 1948 में अमेरिका के उस नस्ली माहौल से शायद एक तरह की दूरी बनाने के लिए वो पेरिस चले गए, और इस बाहरी नजरिए ने उन्हें अमेरिका और उसकी दिक्कतों को शायद और ज्यादा साफ देखने में मदद की, जैसे किसी तस्वीर को बहुत पास से देखने के बजाय थोड़ा दूर हटकर देखें।
बिल्कुल, तो पूरी तस्वीर साफ नजर आती है। और उनका लेखन सिर्फ किताबी ज्ञान या विश्लेषण पर आधारित नहीं था, वो अपनी जिंदगी के तजुर्बों को, अपने दर्द को, अपनी पहचान को, एक अश्वेत समलैंगिक व्यक्ति होने की जो जटिलताएं हैं, उनको कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते थे।
सही कहा,
वो एक गवाह की तरह लिखते थे, सच्चाई बयान करते थे, चाहे वो कितनी भी तकलीफ देह क्यों ना हो। इसीलिए उनकी आवाज में इतनी ताकत है और ईमानदारी भी।
अब आते हैं किताब पर, नोट्स ऑफ अ नेटिव सन। ये 10 निबंधों का संग्रह है, तो ये कोई एक सीधी कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग पहलुओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाती है।
हाँ, एक मोज़ेक की तरह,
हाँ कह सकते हैं। 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका और यूरोप में नस्ल, पहचान, संस्कृति पर विचार, इसमें उनकी निजी जिंदगी की झलकियां हैं, किताबों और फिल्मों पर तीखी टिप्पणी है और समाज का गहरा विश्लेषण भी है।
हाँ, और इसका जो मूल तर्क है वो मतलब दिमाग को झकझोर देता है। बाल्डविन कहते हैं कि नस्लवाद सिर्फ कानून या राजनीति की समस्या नहीं है,
नहीं,
ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक, यहाँ तक कि रूहानी बीमारी है।
रूहानी बीमारी, वाह।
हाँ, जो जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों की रूह को जख्मी करती है। उनके लिए अमेरिका में अश्वेत होने का अनुभव वो नफरत, मतलब अन्याय के खिलाफ नफरत, और प्रेम, इंसानियत के लिए प्रेम के बीच एक बहुत ही नाजुक रस्सी पर चलने जैसा है।
ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है। शुरुआत होती है साहित्य की दुनिया से, जहां बाल्डविन उन विरोध उपन्यासों पर सवाल उठाते हैं जो अश्वेत किरदारों को सिर्फ पीड़ित या गुस्सैल जैसे खांचों में बांध देते हैं। फिर वो हमें हार्लेम की गलियों और अमेरिकी दक्षिण की जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं, और आखिर में यूरोप के अपने अनुभवों के जरिए वो अमेरिकी पहचान और रंग के उस बोझ पर सोचते हैं जो शायद दुनिया भर में किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है।
इसमें कई अहम मुद्दे उभरते हैं, जैसे अश्वेत पहचान कितनी जटिल है, कैसे पॉपुलर कल्चर, फिल्में वगैरह अक्सर अश्वेत जिंदगी का सच्चा अक्स दिखाने में नाकाम रहती हैं।
हाँ, ये स्टीरियोटाइप वाली बात।
बिल्कुल, फिर प्यार और नफ़रत कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ग़ुलामी का इतिहास आज भी कैसे ज़िंदा है, पिता पुत्र के रिश्ते, खुद को खोजने की कोशिश, इतिहास का वज़न, माफ़ करने की मुश्किल चुनौती, और सबसे बढ़कर दूसरों में इंसानियत देखने की नैतिक जिम्मेदारी।
बाल्डविन एक तरह से दिखाते हैं कि अमेरिका का अश्वेत अनुभव वो पूरे अमेरिका की नैतिक कमज़ोरियों और संभावनाओं का आईना है।
तो ये किताब है किसके लिए? शायद उन सब के लिए जो मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने से कतराते नहीं। बाल्डविन अश्वेत और श्वेत दोनों अमेरिकियों से बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है।
हाँ।
वो चाहते हैं कि लोग नस्लवाद को सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बुरे बर्ताव के तौर पर ना देखें, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह समझें, एक पूरी व्यवस्था की तरह, कि ये कैसे काम करती है।
उनका मकसद है अमेरिका को उसके अतीत और वर्तमान से मिलाना और ये समझाना कि नस्ल कोई अश्वेतों की समस्या नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी बुनियादी चुनौती है।
किताब तीन हिस्सों में बटी है, तो चलिए हर हिस्से से कुछ खास निबंधों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बाल्डविन क्या कह रहे हैं और क्यों वो आज भी मायने रखता है। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित है। पहला ही निबंध है एवरीबडीज प्रोटेस्ट नॉवल। इसमें बाल्डविन उस जमाने के विरोध उपन्यासों की आलोचना करते हैं, खासकर हैरियट बीचर स्टोव की मशहूर किताब अंकल टॉम्स कैबिन की।
हाँ, बहुत मशहूर किताब।
हाँ, वो मानते हैं कि ऐसी किताबें नेक इरादे से लिखी गई होंगी, लेकिन वो किरदारों को बहुत सीधा सपाट बना देती हैं। या तो वो बेचारे अच्छे पीड़ित होते हैं या फिर एकदम बुरे जालिम।
और बाल्डविन का कहना है कि ऐसा करके ये उपन्यास असल में किरदारों से उनकी इंसानियत छीन लेते हैं। असली इंसान तो मतलब अच्छे बुरे कमजोर मजबूत का मिश्रण होते हैं, जटिल होते हैं।
हाँ, कॉम्प्लेक्स।
हाँ, कॉम्प्लेक्स।
उन्हें सिर्फ एक लेबल में बांध देना कला की भी नाकामी है और नैतिकता की भी। तो ये निबंध एक तरह से बाल्डविन का घोषणा पत्र है कि साहित्य को इंसानी सच्चाई की जटिलता दिखानी चाहिए, उसे आसान नारों में नहीं बदलना चाहिए। पर एक सवाल उठता है, क्या उस दौर में जब इतना अन्याय था, इस तरह के सीधे विरोध की, भले ही वो कलात्मक रूप से थोड़ा सरल हो, जरूरत नहीं थी?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बाल्डविन शायद ये नहीं कह रहे हैं कि विरोध गलत है, बल्कि विरोध का तरीका कैसा हो इस पर सोच रहे हैं। उनका मानना था कि अगर विरोध सिर्फ गुस्से और नफरत पर आधारित होगा और इंसानी जटिलता को नहीं समझेगा, तो वो उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा जिससे वो लड़ रहा है।
ये गहरी बात है।
उनकी नज़र में सच्ची कला सहानुभूति जगाती है, समझ बढ़ाती है, न कि सिर्फ पक्ष लेने पर मजबूर करती है। और इसी सोच को वो आगे बढ़ाते हैं दूसरे निबंध में, मेनी थाउजेंड्स गॉन। ये रिचर्ड राइट के उपन्यास नेटिव सन पर है।
हाँ, राइट भी उस जमाने के बड़े अश्वेत लेखक थे। बाल्डविन उनका सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनके मुख्य किरदार बिगर थॉमस को लेकर उनके कुछ आपत्तियां हैं, है ना?
बिल्कुल। बाल्डविन कहते हैं कि बिगर थॉमस भी एक तरह के समाज शास्त्रीय खांचे में फंसा हुआ है, यानी उसे सिर्फ बाहरी सामाजिक ताकतों, गरीबी, नस्लवाद की पैदाइश के तौर पर दिखाया गया है। वो पूरी तरह से उस श्वेत समाज की नफरत से बना है जो उसे दबाता है, लेकिन उस नफरत से परे उसकी अपनी कोई अंदरूनी दुनिया, अपनी कोई जटिल पहचान वो नहीं दिखती। बाल्डविन जोर देते हैं कि अश्वेत अनुभव सिर्फ जुल्म की प्रतिक्रिया नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा मानवीय अनुभव है जिसमें खुशी, गम, प्यार सब शामिल है।
ये बहुत अहम बात है, किसी की पहचान सिर्फ उसके उत्पीड़क के संदर्भ में ही परिभाषित ना हो। अच्छा, बातें हैं किताब के दूसरे हिस्से पर, जो अमेरिका में अश्वेत जिंदगी के सामाजिक और निजी अवलोकनों पर है। यहाँ चौथा निबंध द हार्लेम गेटो बहुत प्रभावशाली है।
हाँ, इसमें बाल्डविन हार्लेम का बहुत बेबाक, बिना किसी लाग लपेट के चित्रण करते हैं। वो वहाँ के चर्च, अखबार, नेता सबकी पड़ताल करते हैं, उनकी कमियां भी दिखाते हैं। एक बहुत संवेदनशील मुद्दा जो वो उठाते हैं वो है अश्वेत समुदाय और यहूदी समुदाय के बीच का तनाव।
हाँ, क्योंकि उस समय हार्लेम में कई मकान मालिक और दुकानदार यहूदी थे।
बिल्कुल, और बाल्डविन इसे किसी एक समुदाय की गलती नहीं मानते, बल्कि इस बड़े नस्लवादी सिस्टम का नतीजा बताते हैं, जहां दबे हुए समूह ही आपस में लड़ने लगते हैं। ये अश्वेत समुदाय की अंदरूनी जटिलताओं और कुंठाओं को भी सामने लाता है।
और फिर आता है छठा निबंध, जो किताब का शीर्षक भी है, नोट्स ऑफ अ नेटिव सन। ये शायद इस संग्रह का दिल है, सेखाना?
यकीनन, ये बहुत ही निजी और मार्मिक निबंध है। बाल्डविन इसमें 1943 की गर्मियों की दो घटनाओं को एक साथ बुनते हैं, उनके गुस्सेल और मुश्किल सौतेले पिता की मौत और ठीक उसी दिन हार्लेम में भड़का नस्लीय दंगा।
ओ।
वो अपने पिता के साथ अपने रिश्ते की पड़ताल करते हैं। एक ऐसा आदमी जिसे जिंदगी भर के नस्लवाद ने कड़वा और शक्की बना दिया था, और फिर बहुत ईमानदारी से वो अपने अंदर भी उसी कड़वाहट, उसी नफरत के बीज को महसूस करते हैं।
और उन्हें एक घटना से बड़ा सबक मिलता है जब न्यूजर्सी के एक रेस्टोरेंट में उनके साथ बुरा बर्ताव होता है और वो गुस्से में लगभग आपा खो बैठते हैं। वो किस्सा?
हाँ, उस अनुभव के बाद उन्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है जिसे वो लिखते हैं, घृणा जो इतना कुछ नष्ट कर सकती थी, नफरत करने वाले को नष्ट करने में कभी असफल नहीं होती।
वाओ,
ये एक असाधारण मनोवैज्ञानिक सच है। नफरत सिर्फ बाहरी दुश्मन को ही नहीं बल्कि नफरत करने वाले को अंदर से खोखला कर देती है। उनका निष्कर्ष ये है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लगातार लड़ना है, लेकिन अपनी इंसानियत को बचाए रखने के लिए नफरत को खुद पर हावी नहीं होने देना है। लड़ाई बाहर भी है और अंदर भी।
ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर, जहां बॉल्डविन यूरोप के अपने अनुभवों से अमेरिकी पहचान और नस्ल पर सोचते हैं। नोवा निबंध है इक्वल इन पेरिस।
इसमें वो पेरिस में अपनी एक गलतफहमी में हुई गिरफ्तारी और जेल में बताए कुछ दिनों का जिक्र करते हैं। चादर चोरी का मामला था शायद।
हाँ, कुछ ऐसा ही।
ये अनुभव डरावना भी है और कुछ हद तक बेतुका भी। उन्हें एहसास होता है कि फ्रांस में जो पूर्वाग्रह है वो अमेरिकी नस्लवाद जैसा नहीं है, वो शायद उनकी चमड़ी के रंग से ज्यादा उनके एक बेबस बाहरी विदेशी होने से जुड़ा है।
अच्छा,
लेकिन नतीजा वही है, एक ऐसी व्यवस्था जो आपको इंसान नहीं समझती, आपकी सुनती नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि आप भागकर कहीं भी चले जाएं, आप अपनी पहचान और दुनिया के नजरिए से पूरी तरह बच नहीं सकते।
और फिर आखिरी और शायद सबसे मशहूर निबंधों में से एक, स्ट्रेंजर इन द विलेज।
हाँ, ये कमाल का निबंध है। इसमें वो स्विट्जरलैंड के एक छोटे से दूरदराज के गांव में बिताए वक्त का जिक्र करते हैं, जहां वो पहले अश्वेत व्यक्ति थे जिसे गांव वालों ने कभी देखा था।
सोचिए जरा।
हाँ, गांव वाले सीधे साधे हैं, उनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वो बॉल्डविन को एक अजूबे की तरह देखते हैं, जैसे वो किसी और दुनिया से आए हों। उनकी ये मासूमियत बॉल्डविन को श्वेत पहचान की जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
वो क्या सोचते हैं फिर?
वो ये महसूस करते हैं कि श्वेत यूरोपीय पहचान बहुत हद तक इस विचार पर बनी है कि वे सभ्य हैं और बाकी दुनिया, खासकर अफ्रीकी लोग, असभ्य हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि इन स्विस गांव वालों का, जिनके पूर्वजों ने शायद कभी कोई अश्वेत व्यक्ति नहीं देखा था, और उनका, एक अमेरिकी अश्वेत का, एक साझा इतिहास है।
कैसा इतिहास?
एक ऐसा इतिहास जिसमें इन गांव वालों के यूरोपीय पूर्वजों ने बॉल्डविन के अफ्रीकी पूर्वजों को गुलाम बनाया था। उन्हें पता चलता है कि अमेरिका की नस्लीय समस्या अनोखी इसलिए है क्योंकि वहां अश्वेत और श्वेत लोगों ने एक दूसरे को गढ़ा है। उनका इतिहास और भविष्य बुरी तरह गुंथा हुआ है और उन्हें साथ रहने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। ये निबंध अश्वेत और श्वेत लोगों के इस उलझे हुए भाग्य पर एक गहरा चिंतन है।
तो इन सारे निबंधों को देखें तो कुछ बड़े विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं? पहला कौन सा होगा?
पहला तो है नस्लवाद का मनोवैज्ञानिक बोझ। बॉल्डविन सिर्फ बाहरी भेदभाव की बात नहीं करते, वो दिखाते हैं कि लगातार हो रहा अन्याय इंसान के अंदर कैसे जहर घोलता है। उनके पिता की कड़वाहट, उनका अपना गुस्सा, पहचान का संकट, ये सब उसी जहर का असर है। सवाल ये है कि ऐसे माहौल में कोई अपनी मानसिक सेहत, अपनी इंसानियत कैसे बचाए रखे।
दूसरा अहम संदेश है अश्वेत और श्वेत अमेरिका का टूट रिश्ता। बॉल्डविन कहते हैं कि ये दो अलग दुनियाएं नहीं हैं, इनका भाग्य जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से श्वेत अमेरिकी पहचान खुद को अश्वेत पहचान के विरोध में खड़ा करके बनी है। इसलिए जिसे नीग्रो समस्या कहा जाता है वो सिर्फ अश्वेतों की नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की समस्या है। एक की आजादी दूसरे के बिना मुमकिन नहीं।
तीसरा, अंधे गुस्से के खतरे और प्रेम की जरूरत। हमने नोट्स ऑफ अ नेटिव सन निबंध में देखा कि बॉल्डविन कैसे नफरत के आत्मघाती स्वभाव को समझते हैं। तो विकल्प क्या है? बॉल्डविन एक मुश्किल, चुनौतीपूर्ण किस्म के प्रेम की बात करते हैं। ऐसा प्रेम जो आंखें खुली रखकर सच का सामना करे, अन्याय से लड़े, लेकिन फिर भी दूसरे में इंसानियत देखने की कोशिश करे। ये कोई आसान भावुक प्रेम नहीं है।
हाँ, ये बहुत मुश्किल प्रेम लगता है। और चौथा?
चौथा, पहचान की जटिलता। बॉल्डविन को किसी एक खांचे में बांधा नहीं जा सकता। वो सिर्फ पीड़ित नहीं है, सिर्फ विरोधी नहीं है। यूरोप जाकर उन्हें अपनी अमेरिकी पहचान का और ज्यादा एहसास होता है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि हम सब अपनी पहचान की जटिलताओं को स्वीकार करें, उन लेबलों को चुनौती दें जो समाज हम पर लगाना चाहता है।
ये सारी बातें आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है ना, चाहे हम भारत में इतिहास के बोझ से जूझ रहे हों या समाज में अपनी पहचान को लेकर कश्मकश महसूस कर रहे हों। गुस्सा या दुख महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे समझकर उसे सही दिशा देना, जैसा बॉल्डविन ने करने की कोशिश की, ये वाकई एक चुनौती है।
बिल्कुल, और किताब में ऐसी कई पंक्तियां और विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ पर बात करें?
जरूर। एक विचार जो बार बार आता है वो है इतिहास का महत्व। बॉल्डविन लिखते हैं, ये मानना एक भावुकतापूर्ण भूल है कि अतीत मर चुका है। उनका मतलब है कि इतिहास गुजरी हुई चीज नहीं है, वो आज भी हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को, यहां तक कि हमारे मन को भी आकार दे रहा है। उसे अनदेखा करना खतरनाक है।
और एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात वो कहते हैं, लोग अपनी नफरतों से इतनी हठधर्मिता से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एक बार नफरत चली गई तो उन्हें दर्द से निपटना होगा।
ओह, ये तो बहुत सच है,
है ना? यानी नफरत अक्सर अपने ही दर्द और कमजोरी से बचने का एक बहाना होती है। नफरत करना आसान लगता है अपने दर्द का सामना करने से ज्यादा।
और ये पंक्ति तो नस्ल की पूरी अवधारणा पर ही सवाल उठा देती है। दुनिया सफेद नहीं है, ये कभी सफेद नहीं थी, सफेद नहीं हो सकती। सफेद शक्ति का एक रूपक है।
हाँ, सफेद या श्वेत होना सिर्फ रंग नहीं बल्कि सत्ता और प्रभुत्व का प्रतीक है। बाल्डविन कह रहे हैं कि ये श्रेणियां कुदरती नहीं बल्कि समाज ने अपनी सहूलियत और शक्ति बनाए रखने के लिए गढ़ी हैं।
और आखिर में बदलाव के लिए जरूरी बात, जिस चीज का सामना किया जाता है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब तक उसका सामना नहीं किया जाता तब तक कुछ भी नहीं बदला जा सकता। मतलब अगर हम समस्याओं को देखना ही नहीं चाहेंगे, सच को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो हम उन्हें हल कैसे करेंगे? बदलाव के लिए ईमानदारी से सामना करना पहली शर्त है।
ये विचार सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आप क्या सोचते हैं?
कई तरीकों से, जैसे व्यक्तिगत विकास के लिए, हम अपने गुस्से, अपने पूर्वाग्रहों, अपने मन में छिपे दर्द की जड़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कहीं हम भी तो नफरत को अपने दर्द से बचने का जरिया नहीं बना रहे। अपने परिवार के इतिहास, अपनी तकलीफों को ज्यादा समझदारी और करुणा से देख सकते हैं।
हाँ, और सामाजिक चीजों को समझने में भी मदद मिलती है। हम किसी भी तरह के भेदभाव पर सिर्फ सतही बातें करने के बजाय उसके मनोवैज्ञानिक असर के बारे में सोच सकते हैं। चाहे दफ्तर हो या समाज, हम ज्यादा गहरी सहानुभूति विकसित कर सकते हैं।
बिल्कुल,
इससे DEI यानी विविधता, समानता और समावेशन जैसी कोशिशें सिर्फ दिखावटी ना रहकर ज्यादा सार्थक बन सकती हैं, जो सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि सच में एक दूसरे को समझने और अपनाने पर जोर दे।
और मीडिया को भी हम ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देख सकते हैं। बाल्डविन की तरह हम भी पूछ सकते हैं, ये कहानी कौन सुना रहा है? क्या किरदारों को असली इंसानों की तरह दिखाया गया है या सिर्फ टाइपकास्ट किया गया है? कहीं ये किसी तरह का प्रोपेगेंडा तो नहीं? आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये और भी जरूरी हो गया है।
और आखिर में नागरिक जुड़ाव या एक्टिविज्म के लिए भी बाल्डविन हमें सिखाते हैं कि बदलाव के लिए सिर्फ जोश या गुस्सा काफी नहीं है, एक परिपक्व सोच समझकर की गई कोशिश चाहिए, एक असूली जद्दोजहद यानी सिद्धांतों पर आधारित संघर्ष,
प्रिंसिपल स्ट्रगल।
हाँ, जो उस मुश्किल बिना लाग लपेट वाले प्रेम पर टिका हो जिसकी बात हमने की, जिसका मकसद सिर्फ तोड़ना नहीं बल्कि कुछ बेहतर बनाना हो।
तो इस सारी बातचीत से अगर एक मुख्य बात निकालनी हो तो वो क्या होगी? मेरे लिए शायद यह है कि समाज की बड़ी बड़ी लड़ाइयां आखिरकार इंसान के दिल के अंदर ही लड़ी और जीती जाती हैं। जब तक हम खुद के अंदर झांकने का साहस नहीं करते, बाहर का न्याय पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता।
मेरे लिए जो बात सबसे अलग दिखती है वो है बॉल्डविन का अपनी निजी जिंदगी और राजनीतिक विचारों को मिलाने का हुनर। वो दिखाते हैं कि सबसे ताकतवर सामाजिक आलोचना अक्सर गहरी ईमानदारी और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के साहस से ही निकलती है। ये किताब हमें आसान जवाबों से आगे बढ़कर अपनी इंसानियत की मुश्किल और उलझी हुई सच्चाइयों का सामना करने की चुनौती देती है।
जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बॉल्डविन हमें दिखाते हैं कि अनसुलझा इतिहास हमारे अंदर और हमारे समाज में आज भी जिंदा है। अपने खुद के अंदरूनी इतिहास का, चाहे वो आपका निजी इतिहास हो या आपके समाज का, सामना करना दुनिया के साथ आपके बर्ताव को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचेगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।